हरे कृष्णा। सो आप लोगों को अजीब तो नहीं लगा मैंने बोला अपना जो है माथा जमीन पे लगाओ? अजीब लगा आपको? क्यों अजीब लगा?
इसीलिए अजीब लगा कि जो प्रतिमा है या जो है उसके सामने एक जड़ है। वैसे अब आप अपने हिसाब से बताओगे, मेरा अपना आधार है तो मैंने इसलिए उचित नहीं समझा बोलना। मैं आपका कहना मान गया श्रद्धावश, ऐसी बात नहीं, बाकी आधार अलग अलग है।
आपको किसने, आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो भगवान के विग्रह हैं वो जड़ है।
अब ये तो आप मान रहे हो ना, जब
आप भी तो मान रहे हो।
नहीं, मैं नहीं मान रहा।
आप मान रहे हो जड़ है?
जड़ तो है।
तो आप मान रहे हो ना?
नहीं, भगवान जड़ नहीं है, भगवान की मूर्ति जड़ है।
भगवान की मूर्ति जड़ क्यों है?
अब वो आप देखो क्यों है, क्यों
नहीं? आप कह रहे हो जड़ है, मैं तो अभी आपको सिद्ध करूंगा कि जड़ नहीं है।
अगर मैं इसको नहीं
आप कर लो, बैठ जाओ।
अगर भगवान होगा तो ये
है, ये जो है ना, ये जो मानसिकता है, ये कि मैं देखूंगा, वो हिरण्यकश्यपु की मानसिकता है। तो तर्क जो है, यमराज जी कह रहे हैं कि तर्क से समझ ही नहीं सकते।
नहीं, तर्क भगवान ने दी है, शक्ति बुद्धि दी है।
वो दी है, वो बुद्धि जो भगवान ने दी है, लेकिन उसका दुरुपयोग थोड़ा ना करेंगे।
सदुपयोग भी यही है।
सदुपयोग क्या है? सदुपयोग जो तर्क बुद्धि है, यमराज विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। यमराज जी जो कह रहे हैं कि आप तर्क से समझ ही नहीं सकते भगवान को, आप समझ ही नहीं पाए, आप जड़ कह रहे हो। ब्रह्मा जी ओके, ब्रह्मा जी जानते हो ना कौन है? ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई है, आपको बनाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अंडांत रस्थ परमाणु,
उनके गौणिक नाम है, जो जो शक्ति है वो अगम अगोचर है और अनाम है, अरूप है, लेकिन हमने उसको शब्दों का खिलवाड़ करके उसका गौणिक नाम बना दिया। ये ब्रह्मा, ये विष्णु है, ये शिव है, ये कृष्ण है, ये राम है। अच्छा, राम राम ये है ना, कृष्ण है, रामा रामा कृष्णा कृष्णा, ये क्या मतलब है?
तो आप यहाँ पे क्यों आते हो अगर कुछ नहीं है?
मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ
सबको डिस्टर्ब
नहीं डिस्टर्ब आप डिस्टर्ब हो रहे हो,
मैं तो हो ही रहा हूँ। तो आप, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे आते क्यों?
मैंने बता रखा है ये बात, अब दोबारा
आप बता दो कोई बात नहीं, अब जब सारी बातें खुली रही हैं।
यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, सुनो मैं बता रहा हूँ क्यों। पहली बात एक तो है मनोरंजन, दूसरी बात
अगर आप मनोरंजन को ले, अगर आप मनोरंजन के ले रहे हो तुरंत यहाँ से चले जाएं। अगर आप मनोरंजन के ले रहे हैं तुरंत यहाँ से चले जाओ। अच्छा चलो, दूसरी बात, नहीं मंदिर में और बहुत सारी जगह है, वहाँ जाके बैठ जाओ।
नहीं तो वो मेरा अपना दिल है ना, आपका अनुसार करूंगा तो मैं पता नहीं।
अच्छा और बताओ, तो मेरे अनुसार नहीं करना, मेरे सामने को बैठे हुए
हो। हाँ तो क्या हो गया, जब आपको डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है ये बताओ क्या?
क्योंकि आप भगवान को जड़ कह रहे हो ना, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ।
भगवान मैं भगवान बोल रहा हूँ।
तो भगवान की मूर्ति जड़ है तो आप मंदिर में क्यों आ रहे हो? अरे क्यों आ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर भगवान की मूर्ति जड़ है, आप आई क्यों रहे हो यहाँ पे जड़ के सामने? अपने घर में बैठो। अगर भगवान की मूर्ति जड़ है, यहाँ पे आने की जरूरत क्या है? जड़ के सामने आने का पॉइंट ही क्या है? मैं तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे आप जड़ के सामने क्यों आ रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरा आपसे ये प्रश्न है, जो जड़ है उसके सामने आने की जरूरत क्या? घर में बैठो अपने। हम तो यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि साक्षात भगवान बैठे हैं।
ये आपका अपना दृष्टिकोण है, आपको दृष्टिकोण है,
मेरा दृष्टिकोण नहीं है, ये शास्त्रों का दृष्टिकोण है।
नहीं, शास्त्रों का दृष्टिकोण नहीं है।
तो शास्त्रों का, आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए? आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए? मैंने जो पढ़े हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हैं। तो आप दो प्रमाण, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम, भगवान कण कण में है। अगर भगवान कण कण में है, भगवान विग्रह में भी है। नहीं, बाद में नहीं, अभी कर लो आप जो कर रहे हैं। तो अभी इच्छा नहीं है तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। तो फिर आप चुप करके बैठो। आप आप जड़ क्यों कर, मैंने कब बुलाया आपको?
आपने बोलने के लिए मजबूर किया महाराज।
अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भगवान जड़ नहीं है। आप अगर इस बात से सहमत नहीं हो, आप जा सकते हो।
मैं मूर्ति की बात कर रहा हूँ ना महाराज, मैं भगवान की।
भगवान और भगवान की मूर्ति में कोई फर्क नहीं है।
आपको निमित्त मानो।
तो अगर आप मेरे से सहमत नहीं, आप चले जाओ ना यहाँ से। मैं आपकी बातों पे ध्यान ना दूं?
आप उसी प्रवचन जारी रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बस।
क्या निवेदन कर रहे हो? मैं आपकी बात क्यों मानूं?
मत मानो, चलिए। आप ना सोचिए तो जो भी करो, आपकी इच्छा है।
मुझे आपकी चुप रहना हो।
अरे मैं खुद कह रहा हूँ भाई, चलो ठीक है,
पैसा लगा लो।
पहली बात आप सब समझ लो, अगर आप समझ रहे हो कि भगवान जड़, भगवान की मूर्ति जड़ है, तो यहाँ से फौरन चलते बनो। जब तक आप भगवान की मूर्ति को और भगवान के जो मूर्तियां विग्रह, भगवान की फोटो भी भगवान के विग्रह हैं, अगर आप भगवान की फोटो को, भगवान के विग्रह को भगवान से अलग मानते हो, तो आप भगवान को कभी समझ नहीं सकते। जब समझ ही नहीं सकते, तो मैं, मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि यहाँ बैठ के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, अब आप चुप करके बैठे रहो। ओके, अगर भगवान, और हम अपने शास्त्रों में ऐसा वृतांत है, भगवान कह रहे हैं जो मेरे विग्रह को मुझसे अलग मान रहा, मेरी पीठ पे कोड़े मार रहा है। क्या हम भगवान की पीठ पे कोड़े मारना चाहते हैं? जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि भगवान कण कण में विराजमान है, कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मेरे हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों नाक हैं, हजारों जीव हैं, हजारों पैर हैं, सर्वम आवृत्त तिष्ठति, मैं पूरी सृष्टि को ढककर विराजमान हूं, एक एक कण में। और ब्रह्मा जी पुष्टि कर रहे हैं अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम कि भगवान एक एक कण के अंदर है, और ना केवल एक एक कण में है, बल्कि दो कण के बीच में जो गैप है, जो दो कण के बीच में स्थान है, भगवान वहां भी मौजूद है। हम लोग इस बात को ना तो समझ पा रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार पवर्ग में फंसे हुए हैं। पवर्ग का मतलब है, पवर्ग कहते हैं जो काखा का है, इसमें होता है पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग है, इसमें जो काखा का होता है इसकी वर्गीकरण किया होता है इसका, है ना। तो पवर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म, है ना। तो हम लोग जब तक ये बात नहीं समझेंगे कि कृष्णा और कृष्ण के विग्रह में कुछ फर्क नहीं है, हम लोग पवर्ग में फंसे रहेंगे। पवर्ग का मतलब है प, प का मतलब है परिश्रम, और फ का मतलब है इतना परिश्रम करना कि मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए, फेन निकलना शुरू हो जाए, फ से फेन, और ब से व्यर्थ, कि इतना परिश्रम किया मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया, लेकिन परिणाम क्या निकला? वेस्ट हो गया सब कुछ। क्यों वेस्ट हो गया? क्योंकि भागवतम में कहा गया है कि स्व अनुतिष्ठस्य धर्मस्य, अगर आप अपने धर्म में स्थित हो, विश्वक्सेन कथासु यह ना उत्पादयेत यदि यदि रतिम, अगर आपने बड़ी अच्छी से तरह से अपने धर्म का पालन किया, बहुत यज्ञ किए, परिवार का पोषण किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, अस्पताल बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, लंगर लगवा दिए, लेकिन अगर विश्वक्सेन, विश्वक्सेन का मतलब है कृष्णा, अगर विश्वक्सेन कथासु यह ना उत्पादयेत यदि रतिम, अगर कृष्ण की कथा सुनने में रुचि नहीं आई, श्रम है भी केवल, केवल आपने परिश्रम किया और परिश्रम का परिणाम क्या निकला, थकान। जैसे अगर भूसी है, उसमें से चावल के दाने या गेहूं निकाल दिए, अब खाली भूसी भूसी रहेगी, उसको कितना ही पीटते रहो, उससे क्या निकलेगा, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, उससे सिर्फ हमें एक ही चीज हासिल होगी, थकान, श्रम, और कुछ नहीं होगा, पसीना निकलेगा, मुंह से फेन निकलना शुरू हो जाएगा, झाग निकलना शुरू हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा शाम को। और जब इतना परिश्रम करेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, खाली हाथ हो जाएंगे एकदम, तो पवर, चौथा पवर का भ, भ से है भय, डर लगेगा, शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, खाना कहाँ से आएगा, परिवार का पोषण कैसे होगा, हमेशा डर लगा रहेगा कि हमारे घर में सब ठीक ठाक बना रहेगा नहीं बना रहेगा। और ये सब चीजें सोचते सोचते अगर हम बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पहले ही काल कवलित हो जाते हैं। और लास्ट का पवर्ग है म, म का मतलब है मृत्यु, लास्ट में मर जाएंगे, फिर वापस अगले पवर्ग में फंस जाएंगे। जैसे जैसे कोलू का बैल है, धोबी का गधा है, किए जा रहे हैं काम, किए जा रहे हैं काम, कोलू का बैल चले जा रहा है, चले जा रहा है, कहां पहुंचा, सुबह से शाम तक चल के वहीं पे रहा, गोल घूम रहे, गोली तो घूम रहे, कहीं भी नहीं पहुंचा, तो उसका फायदा क्या हुआ, इतना परिश्रम करने के लिए उसको क्या मिला, धोबी का गधा इतना वजन उठा के घूम रहा है, लास्ट में क्या मिला, थोड़ी सी घास ही तो खा रहा है, वो तो वैसे ही मिल जाती उसको, घास खाने के लिए कुछ मतलब इतना परिश्रम करने का क्या पॉइंट है, नहीं। सो अगर कृष्ण की कथा सुनने में रुचि नहीं आएगी, तो हमने जितने भी यज्ञ किए, जितने भी हमने दान पुण्य कुछ भी किया, कथा सुन ली, बेकार है वो सब, है ना। जब तक रुचि नहीं आएगी, हम उसको बार बार सुन भी नहीं पाएंगे, कैसे सुनेंगे अगर रुचि नहीं होगी तो। और अगर कोई अपने आप को भक्त बोलता है, भक्त का पहला लक्षण ही यही है कि उसको भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है उसकी, है ना। कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं, एक जो भक्त है, एक जो डिवोटी है, जो समझदार व्यक्ति है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, उसका लक्षण क्या है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसका पहला लक्षण है कि वो आपस में कृष्ण के बारे में, मेरे बारे में चर्चा करेगा, कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरे बारे में आपस में चर्चा करेगा, और उससे क्या होगा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उससे क्या होगा कि वो उसको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप खुद सोच के देख लो, क्या हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है क्या, अगर हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा तो हम जितने भी काम कर रहे हैं सब बेकार है ना। टाइम पास तो किए जाओ, टाइम पास तो हो ही रहा है ना। आप समझ लो आप सब एक रस्सी से लटके हुए हो, एक रस्सी से लटके हुए हो आप, और नीचे अंधा कुआं है। रस्सी बड़ी मजबूत है लेकिन एक प्रॉब्लम है, दो चूहे कुतर रहे हैं उसको, सफेद रंग का एक काले रंग का। सफेद रंग का चूहा दिन है, काले रंग का चूहा रात है। लगातार धीरे धीरे कुतरने में लगे हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं रस्सी बड़ी मोटी है, वो मोटी नहीं है, वो धीरे धीरे अभी मोटी दिख रही है, कमजोर होती जा रही है वो। हम लोग मौत के पास जाते जा रहे हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है। अगर किसी को मृत्यु की सजा मिली हो, उसको बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, तो क्या वो एंजॉय करेगा उसको? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और हमारी हालत इतनी खराब है, आप लोग को मतलब हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि अपनी हालत को समझ भी नहीं पाते। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर किसी ने गलत काम किया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, तो दो सजाएं मिलती हैं उसको आमतौर पे, मोटे तौर पे। वैसे तो लाखों तरह की सजाएं हैं, मोटे तौर पे दो सजाएं हैं। या तो उसको बोलते हैं चल बेटा जेल में पड़ा रहा है 2 साल 10 साल 20 साल, या उसको मृत्यु दंड दे देते हैं, है ना, मोटे मोटे तौर पे। जिसको लंबी सजा होती है उसको काम करवाते हैं, चल चक्की पीस, कुछ टोकरियां बना दो या फर्नीचर बनाओ, टॉयज बनाओ। हाँ, काफी काम करते हैं वो। नहीं, जैसे तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में वो लोग अभी बहुत सारे सामान बना बना के जो कैदी बनाते हैं बेच भी रहे हैं। वो हाट लगती है वहां पर, वो सारे कैदी बना रहे हैं, वो खुशी से थोड़ा बना रहे हैं वो, है ना। उनके अकाउंट में रोज के 10-12-15 रुपए जुड़ते हैं उनके अकाउंट में, और 20 साल के बाद उनको 5-7 हजार में पकड़ा के बोलेंगे चलो टाटा बाय बाय। इसको बोलते हैं सश्रम कारावास, है ना। मेहनत करवाते हैं दिन रात उनसे। लेकिन जिसको मौत की सजा दे दी उससे काम नहीं करवाते, उससे नहीं, वो चल मरने वाला पड़ा रहे चल कोई नहीं। हाँ, उसको धार्मिक किताबें देते हैं, चल पढ़ो भैया, कुछ हो सकता है तुम्हारे भगवान के प्रति कोई रुचि आ जाए, है ना। सुबह शाम डॉक्टर आके चेक करता है तो बुखार तो नहीं हो गया, है ना, क्योंकि अगर बुखार हो गया तो फांसी नहीं दे सकते उसको, नहीं। हमारी क्या हालत है कि हमें मौत की सजा भी दे रखी है और साथ में काम भी करवा रहे हैं, नहीं, सही है गलत है? कितनी खराब हालत है यार। मैं आज सोच रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया तब से। मैंने कहा यार मतलब मौत की सजा भी दे दी कि देख बेटा मरना है तेरे को। फर्क इतना है कि कैदी को पता है कि फलानी तारीख को भैया तेरे को लटकाएंगे, तारीख हमारी भी निश्चित है, हमें अभी तक नोटिस नहीं मिला, हमें मिलेगा भी नहीं, है ना। चेतावनी के सिग्नल आते रहते हैं, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, शरीर चलना बंद हो गया, घुटनों में दर्द हो गया। मेरे को भी इसमें से 3-4 वार्निंग आ चुकी आगे कमजोर हो याददाश्त कमजोर हो गया। आप में से किसी को आ रही है सिग्नल? टेलीग्राम आया किसको आया टेलीग्राम? 1-2। हाँ, आपको नहीं आया टेलीग्राम? तो हमारी हालत तो वो जो जेल का कैदी है उससे भी खराब है कि मृत्यु दंड भी मिल गया और पिले भी हुए हैं काम के अंदर, दिन रात काम किए जा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, सच सच बताना। और मजे की बात है कि ये सारा हो गया, दुख होना तो दूर की बात है, हम सोच रहे हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, हमसे बड़ा इंटेलिजेंट ही कोई नहीं है। अरे ये सोचो यार, बाहर कैसे निकलना है जन्म मृत्यु के चक्कर से, ये पवर्क में कब तक फंसे रहोगे। सूत गोस्वामी श्रीमद भागवतम में कह रहे हैं, धर्मस्य अपवर्गस्य, जो धर्म का जो लक्ष्य है, धर्म का लक्ष्य है
बेटा, चुप हो जाओ,
नहीं नहीं बैठे बैठे रहने दो, हाँ कोई बात नहीं बैठे रहने दो, लेकिन आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, ठीक है, कैन यू मैनेज दैट। सो सूत गोस्वामी भागवतम में कह रहे हैं, धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है धर्म का, वो अपवर्ग, इस परिश्रम फेन भय व्यर्थ और मृत्यु से बाहर निकलना है। धर्म का जो लक्ष्य है वो इंद्र तृप्ति का सामान इकट्ठा करना नहीं है, हम लोग परिश्रम कर रहे हैं इंद्र तृप्ति का सामान इकट्ठा करने में, वो लक्ष्य है ही नहीं। अब जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से, कितना टाइम है हमारे पास, 8:30 तक करते हो आप लोग, जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेंगे, कि हम जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, अगर भगवान को संतुष्ट नहीं किया, समसिद्धिर हरितोषणम, जीवन की सिद्धि है कृष्ण की प्रसन्नता, और हम कृष्ण की पीठ में छुरा मार के कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, कृष्ण तो छोड़ो एक साधारण आदमी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, कोई सवाल नहीं है। सबसे कृष्ण को अगर हमने प्रसन्न करना है, सबसे पहला लेसन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है कि जो भगवान के विग्रह हैं उनमें और भगवान में कुछ फर्क नहीं है, ये समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि भगवान की मूर्ति तोड़ दी, अगर भगवान होते तो रक्षा कर लेते, भगवान उनको तोड़ने देते हैं विग्रह को कि तोड़ो ताकि तुम में मेरे प्रति और घृणा बढ़ जाए, जब तुम में मेरे प्रति घृणा बढ़ जाएगी तो तुम और नीचे गिर जाओगे संसार के अंदर, उसको सजा देने के लिए भगवान अपने विग्रह की रक्षा नहीं करते। औरंगजेब, ये जितने भी मुसलमान आए उन्होंने यही सोचा कि तोड़ दो हिंदुओं के जो वे विग्रह हैं, भगवान को मार दो। हिरण्यकशिपु पूरा संसार, उसने 14 लोक ऊपर नीचे घूम लिए विष्णु को कृष्ण को ढूंढने के लिए, क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मार दूंगा मैं इसको। अपने हृदय में झांक के ही नहीं देखा उसने, कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठा हूं, अंदर देख लेता, इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं और जो कृष्ण अपने धाम में बैठे हैं, क्या फर्क है उनमें, कोई फर्क नहीं है। और जो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, जो कृष्ण अपने धाम में बैठे हैं और जो कृष्ण के विग्रह हैं, क्या तीनों अलग चीजें हैं, अलग चीजें नहीं है। जो हमारे हृदय में बैठे हैं, जो धाम में बैठे हैं, जो विग्रह हैं और जो उनके नाम है, क्या उसमें कुछ फर्क है, कोई फर्क नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और इसको समझने का तरीका है अपना माथा जमीन पे लगाना। इसलिए मैंने आपको जबरदस्ती की थी कि अपना माथा जमीन पे लगाओ, जब तक भगवान के सामने माथा नहीं टेकोगे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते, पॉसिबल नहीं है। तर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता। जो हम आपको बता रहे हैं, जो अभी हम पिछले 15-20 मिनट से जो हम आपको बता रहे हैं, ये तर्क नहीं है, ये प्रमाण है भगवान की सर्वश्रेष्ठता के। जब तक हम इनमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं करेंगे, हम हरे कृष्ण महामंत्र भी ठीक से जप नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न है, चैतन्य रस विग्रह कि पूरी तरह से चैतन्य है, जड़ नहीं है, रस विग्रह और रस से भरे हुए हैं, इतना स्वाद है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम उसको, हमारा अभी उसमें रुचि नहीं आ रही, टेस्ट नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जिस प्रकार अगर किसी को पीलिया हो जाए उसको चीनी खाने को तो कड़वी लगती है, जॉन्डिस हो जाए जिसको, लेकिन पीलिया का इलाज क्या है कि उसको मीठा देते रहो, धीरे धीरे मीठा चूसता रहेगा, पीलिया दूर हो जाएगा, जो टॉफी चीनी जो पहले कड़वी लग रही थी मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। अभी हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि कृष्णा अलग है, कृष्ण के विग्रह अलग है, हृदय में कृष्णा अलग है, कृष्ण के नाम अलग है, नहीं है अलग। और जब तक हम बार बार भगवान के चरणों में माथा नहीं टिकाएंगे, भगवान के चरणों में माथा टिकाने का मतलब है हम नहीं समझ पा रहे, प्लीज प्लीज आप कृपा प्रदान कीजिए, प्लीज हमें आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम आपको समझ सकें, थोड़ा सा समझ सकें हम आपको। ये भगवान के सामने सिर झुकाने का मतलब है। हमें कुछ शौक नहीं है कि देखो हमारे सामने थोड़ा झुक रहे हो, आप प्रभुपाद के सामने झुक रहे हो, आप भगवान कृष्ण के सामने झुक रहे हो और जो कुछ भी आपको चाहिए वो इन्हीं से मिलेगा। जो भी आपको चाहिए, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञाने च भरतर्षभा, आपको अगर संकट में हो, आपको कुछ सुख चाहिए, उससे संकट से छुटकारा चाहिए, कृष्ण के पास आ जाओ। चतुर्विधा भजन्ते माम, कृष्ण कह रहे हैं कि चार तरह के लोग आते हैं मेरे पास में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो, ये हाँ जना सुकृतिनो अर्जुना, कि हे अर्जुन चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं और वो चार लोग कौन है? सुकृति है, भाग्यशाली है, पुण्यवान है। और वो चारों लोग क्या कर रहे हैं? चारों लोग भगवान के सामने आके सिर झुका रहे हैं, चाहे उसके पीछे चार अलग अलग उद्देश्य हैं उनके। अगर कोई दुख तकलीफ में है तो भी आरती, आओ भगवान के सामने माथा टेको, भगवान से बोलो प्लीज रक्षा करो, त्राही माम प्लीज रक्षा कीजिए, तो कृष्ण रक्षा करेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं प्रॉब्लम सारी है, चलो गणेश जी के पास चलते हैं। गणेश जी के पास जाना बुरा नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि गणेश जी जो विघ्न हरता है, विघ्न हरने की शक्ति कहां से आ रही है? विघ्न हरने की शक्ति उनके पास आ रही है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दोनों चरण कमल गणेश जी की दांतों पे रखे हुए हैं, उनके सिर पे भगवान कृष्ण ने अपने चरण कमल रखे हुए हैं। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा। गणाधिराजा कौन है? गणेश जी। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान हंतुम अलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमम मजामि। गणेश जी विघ्न हरता है, तीनों लोकों के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, उसको हर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आई? ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो शक्ति आई क्योंकि वो कृष्ण के सामने शीश झुकाते हैं और भगवान कृष्ण उनकी श्रद्धा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने दोनों चरण कमल उनके सिर पर रख देते हैं। और उससे, क्योंकि गणेश जी का जो शीश है वो भगवान के चरण कमलों से सुशोभित है, इसलिए गणेश जी के पास ताकत है विघ्नों को हरने। तो ये आरती, दूसरा कृष्ण कह रहे हैं अर्थार्थी, जो चार तरह के पुण्यशाली लोग हैं, अर्थार्थी। दूसरा है अर्थार्थी, जिसको कुछ पैसा चाहिए, गरीब है, नहीं घर चल पा रहा, बड़ी प्रॉब्लम है, तो कृष्ण के पास चले गए कुछ मांगने के लिए। सुदामा भी तो गए थे, और कहां से चले थे? द्वारका तक चल के गए। किसी के पास भी जा सकते थे लेकिन कृष्ण के पास गए। क्यों कृष्ण के पास गए? अगर धन भी चाहिए तो भी कृष्ण के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि कृष्ण लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं, करोड़ों लक्ष्मियां, एक दो नहीं, करोड़ों लक्ष्मियां। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, अरे लक्ष्मी पति को बोल दो कि प्लीज हेल्प कर दो, वो अगर कृष्ण लक्ष्मी जी को बोलेंगे, लक्ष्मी जी एक सेकंड में काम कर देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगी लक्ष्मी जी। लेकिन अगर कृष्ण को बोलेंगे तुरंत काम हो जाएगा। दिवाली को लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, अब कहां से ले आए गणेश लक्ष्मी? क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बकवास चीजें चल रही हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, सब चल रहा है। अरे कृष्णा कहां है जिनके लिए दिवाली मनाई जा रही है? भगवान राम कहां है जिनके लिए दिवाली मनाई जा रही है? भगवान राम और सीता को अलग रावण ने किया था, नष्ट हो गया था सब वंश। हम लोगों ने भी गणेश लक्ष्मी की पूजा करके भगवान राम को साइड पे कर दिया, क्या हम रावण से अलग हैं? अगर धन भी चाहिए तो कृष्ण की शरण में जाओ। और अगर जिज्ञासा है, अच्छा देखते हैं क्या है, तीसरा बोल रहे जिज्ञासु, तो देखते हैं कृष्ण की क्या महिमा है, तो कृष्ण कह रहे हैं आ जाओ मैं बता दूंगा। और चौथा ज्ञानी, जिसको पता है कि कृष्ण की क्या महिमा है, जिसको कृष्ण की महिमा पता चल गई वो क्या करेगा? वो भी भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने, उनकी मूर्ति के सामने आएगा और सिर झुकाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात उसको पता चलेगी कि कृष्ण और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण के सामने सिर्फ उनके भक्ति आते हैं, कृष्ण के सामने हजारों करोड़ों लोग आते हैं। क्या दुर्योधन कृष्ण के सामने नहीं आया था? क्या हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कृष्ण के सामने नहीं आए थे? लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया। और हिरण्यकशिपु ने तो बोला कि बताओ कहां पर है तुम्हारा भगवान कृष्ण, बताओ कहां पर है, क्या क्या ये खंभे में है? तो प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था ब्रह्मा जी के वाक्य पे, अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थ, भगवान कण कण में है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ भगवान इस खंभे के अंदर भी है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला आज इस खंभे को तोड़ दूंगा, तुम्हारा भगवान मर जाएगा। खंभे को तोड़ा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगम, मच्छर की तरह मार दिया उसको। तनु भृंगम, भृंग का मतलब होता मच्छर, मच्छर की तरह मार दिया। तो क्या हम भगवान का विग्रह तोड़ेंगे, क्या भगवान आके हमें मारेंगे? अभी हमारे में इतनी ताकत नहीं है, पहले हिरण्यकश्यप बनना पड़ेगा, फिर भगवान आके सिंघार करेंगे। भगवान बोलेंगे तुझे मारने की क्या जरूरत है, 10-20 साल में अपने आप ही मर जाएगा। मैं क्यों स्पेशली तकलीफ दूं अपने आप को? नहीं, इसीलिए नहीं आएंगे भगवान। कहां है औरंगजेब, कहां है मुसलमान सारे, सब मर गए, भगवान आए भी नहीं, भगवान ने देखा भी नहीं उनकी। जो लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं, भक्त की पहले परिभाषा समझ लो। भक्त की परिभाषा है कि हमें जब हम भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं, हम कोई पत्थर की या लोहे की तांबे की मूर्ति के सामने नहीं खड़े हुए, हम साक्षात भगवान विराजमान है। क्यों भगवान विराजमान है? क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, क्या बताएं आपको, इतने दयालु भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि मैं कण कण में विराजमान हूं लेकिन ये मुझे देख नहीं पा रहा, नहीं देख पा रहे ना। क्यों नहीं देख पा रहे? हमारे पास, हमारी आंखों में कमी है, हम नहीं देख सकते भगवान को। तो भगवान ने कहा फाइन, कोई बात नहीं, आप अभी अपनी अपूर्ण, अपनी दूषित इंद्रियों से मुझे नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, मैं विग्रह में प्रकट हो जाता हूं कि चलो तुम देख के कुछ सेवा तो कर पाओ, क्योंकि जब तक तुम देखोगे नहीं सेवा कैसे करोगे, भोग कैसे लगाओगे, अपना सब कुछ अर्पण कैसे करोगे। इसीलिए भगवान विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, आके छुरी मार देते हैं, भगवान के विग्रह अलग है, अब भगवान अलग है, नहीं है अलग। भक्ति की पहली सीढ़ी यही है, ये समझना कि भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सो आप लोग, मैं ये मानता हूं कि आप लोग अबोध हो, आपको पता नहीं है चीजों का। ऐसा नहीं है कि आप भगवान से ईर्ष्या कर रहे हो, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शास्त्र पढ़ना शुरू कर सकते हो, अगर आप बोलो जी हमारे में पढ़ने की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर सुनो, और हफ्ते में एक लेक्चर सुनने से बात नहीं बनेगी। आप सोचो कि जी हम शनिवार को 7:30 से 8:30 बजे आए, चलो सुन लिया, अब बाहर जाके आपको एक घंटे के बाद पूछे तो 95 चीजें 100 में से याद भी नहीं होंगी आप लोगों को, आप दोहरा नहीं पाओगे उन चीजों को। अगर आप ये पहले समझ लो कि टाइम बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है, देखते देखते बूढ़े हो गए हम, और जो नहीं हुए उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। एकदम अचानक कभी शीशा देखेंगे बोलेंगे यार बाल सफेद हो गए क्या, नहीं पता ही नहीं चलता, इतनी तेजी से टाइम बीत रहा है। तो सिर्फ हफ्ते में एक दिन से बात नहीं बनेगी। यहां पर हम लोग कोई भी काम हो दुनिया भर के धक्के खा लेते हैं जाके। ये आपके पास में इस्कॉन के मंदिर है, आप जाओ वहां पे, जाओ वहां पे हमारे जैसे हजारों भक्त हैं, हम उनके सामने कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देंगे आपको, इतने अच्छे भक्त हैं मंदिरों में। आप इस्कॉन के मंदिरों में जाओ, वहां पर भगवान के इतने सुंदर विग्रह हैं, उनको दर्शन करो, कुछ भगवान के लिए भेंट लेके जाओ, फल लेके जाओ, फूल लेके जाओ, कुछ तुलसी के पत्ते लेके जाओ, कुछ 100 रुपया 10 रुपया 11 रुपये 5 रुपये 2 रुपये कुछ भगवान को वहां पे चढ़ा के आओ, जो आपकी क्षमता है। नहीं चढ़ा सकते, जाओ वहां पे भगवान के सामने माथा टेक के वापस आ जाओ। जो वहां पे भक्त है उनसे बोलो कि आप प्लीज बताओ भगवान के बारे में हमें। जब तक हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम हफ्ते में एक दिन से सोचेंगे संतुष्ट है हम, नहीं बात बनेगी। घर से आपको थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। इस्कॉन के मंदिरों में जाओ, जो रामचंद्र रघुवीर प्रभु है, ये वामन रूपा प्रभु है, ये रूपानंद प्रभु आपके पास आ रहे हैं, आप इनको बोलो कि हम, आप बताओ हम और प्रवचन कैसे सुन सकते हैं आपके घर में। चलो रेडियो टेप रिकॉर्डर नहीं होगा, मोबाइल फोन तो सबके पास है आजकल, मोबाइल फोन में डलवा लो, रोटी बनाते समय कान में लगा के सुनते रहो उसको, खाना भी बनाते रहो सुनते भी रहो। मैं पहले रोहिणी से गुड़गांव जाता था तो 1.5 घंटा लगता था मेरे को जाने में, 1.5 घंटा आने में, 1.5 घंटा मैं डेली 4-5 लेक्चर सुन लेता था। मैं क्या करूंगा, और मैं आसपास देखता था ऐसे लोग बैठे हुए गाड़ी में, अबे कुछ तो कर लो भाई, कुछ करते नहीं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। और अगर आप कान रोटी बनाने में कानों का क्या यूज कर रहे हो आप, चलो बता दो, कोई यूज नहीं कर रहे कानों का। अरे मोबाइल में लेक्चर लगा के रख दो, लेक्चर चलता रहेगा, कानों से सुनते रहोगे, कोई लेक्चर चलेगा हाथ चलना थोड़ा बंद हो जाएंगे, बनाते रहना खाना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब आप सोचो कि मैं तो कुछ करूंगी नहीं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, जो करना है कृष्ण करेंगे तो कृष्ण करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूं जो करना है। मैंने तो आपको इंद्रियां दे दी, आपको एक जीवन आयु प्रदान कर दी, खत्म हो जाएगी, मर जाना, फिर देखेंगे अगला जन्म क्या होगा। तो कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करो, कुछ कदम आगे बढ़ाओ। सिर्फ मतलब जो करेंगे कृष्ण हमारे लिए करेंगे, हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी उससे। हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे हमें। छोटा मोटा बुखार होगा ना तो मीठी गोली खाओगे ठीक हो जाएगा, बड़ी बीमारी होगी कड़वी गोली खानी पड़ेगी और परहेज भी करना पड़ेगा। ये भव रोग से बड़ा रोग कोई नहीं है। हम सोचेंगे हम चार पाई पे बैठे बैठे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, हमें परहेज भी करना पड़ेगा, दवाई कड़वी भी खानी पड़ेगी, हमें भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा, सेवा में लगना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पे ये पंखे नहीं जरूरत, ये लाइट की जरूरत नहीं है, अपने आप सब चीज प्रकाशमान है, जहां पे ऐसे पेड़ पौधे नहीं है जो ये बाहर मंदिर के बाहर पड़े हुए हैं, वो फल ही नहीं लग रहे, फूल ही नहीं लग रहे, कुछ डेकोरेशन पीस। हर वृक्ष भगवान के धाम में कल्प वृक्ष है। नीचे खड़े होकर बोलोगे यार आज तो खीर खाने का मन कर रहा है, फटाक से आपके हाथ में खीर का भगोना आ जाएगा और एकदम टेस्टी। आप बोलो आज तो राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, एक सेकंड में राजमा चावल आ जाएगा, कुछ नहीं करना। और वामन रूपा प्रभु कह रहे हैं सोने के बर्तन में आएंगे। वहां पे कृष्ण लेके जाना चाह रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो करो। तो प्लीज आप थोड़ी सी अनमने भाव से भक्ति करने से बात नहीं बनेगी। और आप ये मत सोचो कि आप ज्यादा भक्ति करोगे घरवाले आपके गेस्ट हो जाएंगे। सारी गोपियां कृष्ण की सेवा कर रही थी, आप कहीं पे भी दिखा दो उन पे कभी आंच आई हो, कभी आंच नहीं आती भगवान के भक्तों पे। हमें भगवान की प्रोटेक्शन पे, भगवान की सुरक्षा में विश्वास होना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यम, मैं रक्षा करूंगा, और केवल ऐसा नहीं कि रक्षा ही करता रहूंगा, जो नहीं है वो दूंगा, और कैसे दूंगा, ऐसे नहीं है कि इनको बोल दिया जा भी वहां पे जाकर दे, वहां ही खुद अपने कंधे पे उठा के लेके आएंगे कृष्ण। और हमारे शास्त्रों में हजारों उदाहरण है ऐसे कि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी खुद अपने भक्तों के लिए सामान लेके आती हैं, हजारों उदाहरण है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें भगवान की भक्ति में थोड़ी गंभीरता लानी पड़ेगी, हमें कम से कम 16 माला रोज जप करना पड़ेगा, प्रभुपाद की शरण लेनी पड़ेगी, प्रभुपाद के कहे अनुसार अपना जीवन चलाना पड़ेगा, तो कृष्ण सोचेंगे हमारे बारे में, नहीं तो कोई चांस नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।